इत्तेफाक या साजिश? सबके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि एक पल पहले जो लड़की सबके सामने हाथ जोड़कर अपने बचाए जाने की गुहार लगा रही थी, वो अब अचानक जोर जोर से हंस रही थी। अब सब लड़कियां चिंतित होकर एक दूसरे देखने लगीं। लेकिन तभी संजना मुस्कुराते हुए सीधा आस्था के फेस के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आस्था आस्था आस्था, मानना पड़ेगा, ये दुनिया बहुत छोटी है आस्था। मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखूंगी, लेकिन देखो, किस्मत ने मुझे एक बार फिर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आस्था कुछ बोल पाती इससे पहले ही संजना फिर से बोल पड़ी, एक और बात आस्था, भले ही बचपन से लेकर आज तक तुम हर चीज में मुझसे बेहतर रही हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे पति अरमान सिंघानिया को अपना बनाकर ही रहूंगी और उससे शादी करूंगी। अगर तुझ में हिम्मत है, अगर तुझ में जरा भी दम है, तो तू मुझे रोक कर दिखा, मैं तुझे खुली नंगी चुनौती देती हूँ। ये कहकर संजना ने बड़े ही नज़ाकत से अपने बाल झटक दिए थे। वहीं अब संजना की इस तरह की बातें सुनकर सब लोग जो कुछ देर पहले उस पर थोड़ा बहुत तरस खा रहे थे, अब उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई थीं, और अब उन सबकी आंखों में संजना के लिए गुस्सा और नफरत साफ साफ छलक रहा था। लेकिन इससे पहले कि कोई उसे कुछ कह पाता, तभी अरमान की आवाज वहां सुनाई दी, आहान आहान। अब जैसे ही अरमान ये कहते हुए वहां आया, आहान जो कि अभी संजना को गुस्से से घूर कर देख रहा था, और यहां तक कि संजना की वजह से उसने आस्था से थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर दी थी, उसका चेहरा अचानक बदल गया। अब अरमान को वहां देखकर आहान की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गईं। सभी लोग अब एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखकर ये इशारे करने लगे कि अरमान के सामने संजना से कोई कुछ नहीं कहेगा। हवा में अभी भी तनाव भरा हुआ था। ये खामोशी भरा माहौल अरमान को बेचैन कर गया। वो वहां आते ही सबकी तरफ देखकर बोला, क्या हो रहा है यहां पर, सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं, और संजना तुमने अच्छे से खाना खाया नहीं? जिसे सुनकर संजना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ अरमान जी, मैंने अच्छा से खाना खाया, सच में खाना बहुत टेस्टी बना था। ये कहने के बाद उसने तिरछी नजरों से आस्था की तरफ देखते हुए आंख मारी दी थी, जिसे देखकर सब उसने गुस्से और इरिटेशन से घूरे रहे थे। वहीं रौनक धीमी आवाज में बड़बड़ाने लगी, अगर अरमान भाई थोड़ी देर और नहीं आते तो मैं इस कुतिया के बाल नोच नोच कर इसे यहीं पटक पटक कर मारती। राधिका, वंशिका और रश्मि के मन में भी ठीक यही विचार चल रहे थे। फिलहाल आहान तुरंत अरमान के पास आया और हड़बड़ाती हुई आवाज में उससे पूछा, भैया आपने बुलाया? अरमान धीमी आवाज में बोला, इसको शायद नींद आ रही थी, इसलिए देखो बाहर गार्डन में जाते ही सो गया, इसे ले जाओ और अच्छे से सुला दो। ये बोलकर उसने अंश को आहान की गोद में थमा दिया। तभी संजना बोली, मिस्टर सिंघानिया, एक्चुअली मुझे काफी लेट हो गया है, तो मैं अब घर चलती हूँ। अरमान उसकी बात काटते हुए बोला, तुम अकेली कैसे जाओगी, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये कहकर उसने आस्था की ओर टेढ़ी नजरों से देखा, फिर जल्दी से संजना को लेकर बाहर निकल गया। चलते चलते अचानक संजना ने एक बार फिर पीछे मुड़कर आस्था को देखा और आंख मारी। अब ये देखकर तो सबके खून में आग लग गई थी, और अगले ही पल सबने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। लेकिन तभी संजना ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। उसके वहां से जाने के बाद सभी घरवाले नानीमा और आस्था को सवालिया नजरों से देखने लगे, और अब बाकी सब नानीमा और आस्था से एक के बाद एक सवाल करने लगे, आस्था ये लड़की कौन है? और तभी आकाश आश्चर्य से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई गलत लड़की अचानक अरमान की जिंदगी में आ जाए, मैंने तो उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया था, सब कुछ तो ठीक ठाक था, फिर इसका बर्ताव इतना अजीब क्यों है? सभी के दिमाग में ढेरों सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन इसका जवाब सिर्फ आस्था के पास था, इसलिए सब उसे आश्चर्य और सवालिया निगाहों से देख रहे थे। तभी आस्था ने गहरी सांस ली और दबी हुई आवाज में बोली, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि गांव के ठाकुर दुर्जन सिंह की बेटी है, संजना सिंह। अब जैसे ही आस्था ने ये शब्द कहे, वैसे ही सबके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। दुर्जन सिंह, उसे भला कोई कैसे भूल सकता था? सबने एकदम से अपने सिर पर हाथ रख लिया। अब सबके दिमाग में ये सवाल तेजी से चलने लगे। सब एक के बाद एक अंदाजा लगाते हुए कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, तो क्या ये अपने बाप का बदला लेने आई है? हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? उसके सरनेम से हमें पहले ही अंदाजा लगा लेने चाहिए था। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये लड़की इस तरह से उनकी जिंदगी में अचानक आ जाएगी, और अगर इसने हमें अपना असली रूप दिखाया है तो पक्का ये पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ आई है, और ये जरूर अपने बाप का बदला लेने के लिए यहाँ आई होगी। अब ये सुनकर आस्था बोली, नहीं, ये अपने बाप का बदला लेने के लिए नहीं आई है, बल्कि ये यहाँ हमसे हमारे पति मिस्टर सिंघानिया को छीनने के लिए आई है। अब जैसे ही आस्था ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात बोली, तो सारी लड़कियां पूरी तरह हैरानी से भर उठीं और एक साथ उससे सवाल करने लगीं, आस्था ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये लड़की भला अरमान को तुमसे कैसे छीन सकती है? और तुम अरमान की बीवी हो, कोई गर्लफ्रेंड नहीं जो कोई भी आकर तुम्हारी जगह ले सकता है। तभी आस्था दुखी स्वर में बोली,
हम इस लड़की को बचपन से जानते हैं। बचपन से लेकर आज तक ये हमेशा मुझसे हर चीज छीनती आई है, लेकिन ये कभी मेरा दिमाग, मेरी कामयाबी या मेरी नानी माँ को छीन नहीं पाई। बचपन से ही इसे हर उस चीज को पाने की ललक थी जो चीज हमारी होती थी। ये कहते हुए आस्था एक छोटे से फ्लैशबैक में खो गई थी। जब गांव में आस्था रहा करती थी, तब एक बार गांव के एक मेले से नानी माँ ने आस्था के लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया खरीदी थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। लेकिन आस्था की ये खुशी संजना को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसलिए रात में वो चुपके से आस्था के कमरे में घुसी और उस गुड़िया को चाकुओं से गोद डाला था। बचपन से लेकर आज तक संजना आस्था से बेहद नफरत करती आई थी, हालांकि आज तक आस्था को उसकी इस नफरत का कारण समझ नहीं आया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से संजना उससे इतनी ज्यादा नफरत करने लगी थी? लेकिन अब संजना के बारे में सोचकर आस्था को एक अजीब सा डर सताने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी आकाश उसे आश्वासन देते हुए बोला, आस्था, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज ही इस लड़की को ऑफिस से निकलवा दूंगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तब आस्था गहरी परेशान नजरों से उसे देखते हुए बोली, भैया, जब उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि मिस्टर सिंघानिया खुद उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर यहाँ तक लेकर आए हैं, तो इसका मतलब साफ है कि उसे अब ऑफिस से निकलवाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम संजना को अच्छी तरह जानते हैं। अपने जुनून में वो कुछ भी कर सकती है, और अगर उसने हमें खुलेआम चुनौती दी है, तो इसका मतलब साफ है कि वो मिस्टर सिंघानिया की खोई हुई यादों के बारे में काफी कुछ जानती है, जिसके बारे में हमें अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। जैसे ही आस्था ने परेशानी भरी आवाज में ये सारी बातें कही, तो वैसे ही सभी लोगों के चेहरों पर टेंशन साफ छलकने लगती है। लेकिन तभी वहां उन्हें नानी माँ की थोड़ी ऊंची आवाज सुनाई देती है। तो फिक्स क्यों करती है गोरी बिटिया, हम है ना, जैसे आज तक हम तुझे उस कलमुही चुड़ैल से बचाते आए हैं, वैसे ही आगे भी बचाएंगे। तो चिंता ना कर, तेरी जिंदगी पर उसका काला साया कभी नहीं पड़ने देंगे। जैसे ही नानी माँ ने ये बातें कही, वैसे ही आस्था आगे बढ़ी और नानी माँ को कसकर गले से लगा लिया। लेकिन उसकी आंखों के सामने से वो दृश्य चाह ही नहीं रहा था।
जब संजना ने अरमान को मुस्कुराकर गले लगाया था, उसे एक अजीब सी फीलिंग महसूस होने लगी थी, या यूं कहूं कि उसे अजीब सी इनसिक्योरिटी महसूस होने लगती है, क्योंकि अरमान की यादें उसके पास नहीं थीं, और वो यादें किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं गई थीं, बल्कि जानबूझकर मिटाई गई थीं। अब ये सारी बातें सोचकर आस्था का दिमाग किसी अलग ही डायरेक्शन में जा रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं उसे शक हो रहा था ये सारा मामला एक इत्तेफाक ना होकर जरूर एक साजिश थी। संजना इतनी बड़ी प्लानिंग के तहत मेरी जिंदगी में कैसे आ सकती है? अगर वो अरमान सिंघानिया की जिंदगी में आई है, तो मतलब उसने अरमान के बारे में सब कुछ पहले से पता कर लिया होगा। तो फिर इतने बड़े और खतरनाक इंसान के साथ खेलने की हिम्मत उसे आखिर किसने दी? आस्था दिमाग में इस वक्त जो भी आ रहा था वो सोचती जा रही थी। वहीं आहान की आंखों में आस्था के लिए बेहद इमोशंस भरे हुए थे। उसने आस्था के सामने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा भाभी, मुझे नहीं पता था कि ये संजना क्या चीज है, और उसकी वजह से मैं आपसे थोड़ी तेज आवाज में बात कर बैठा। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं और ध्रुव बहुत जल्द इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, ये जहां से भी आई है मैं इसे वापस वहीं भेज दूंगा। पक्का ये किसी ना किसी मेंटल असाइलम में रहकर आई है, तभी तो इस तरह से हम लोगों के सामने खुली चुनौती देकर गई है। तभी सुमित आगे आया और बोला, आहान, अगर वो इस तरह हमें चुनौती देकर गई है, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना तुम? इसका मतलब साफ है कि कुछ तो ऐसा है जो ये लड़की हम लोगों से छुपा रही है। यहाँ बात सिर्फ आस्था की नहीं है, भले ही ये लड़की यहाँ आस्था को नीचा दिखाने के लिए आई हो, लेकिन इस तरह से अरमान सिंघानिया की जिंदगी में आने का मतलब सीधे सीधे मौत को न्योता देना है। जरूर ये बात इसे भी अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी अगर इसने अरमान सिंघानिया की जिंदगी में आने का साहस किया है, तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण है। कुछ तो ऐसा है जो ये लड़की हमसे छुपा रही है। इस वक्त सभी लोग पूरी तरह से अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी आस्था ने अपनी आंखें बंद की और एकदम से बोल पड़ी, मुझे इस वक्त अकेला रहना है। अचानक से संजना का मेरी जिंदगी में इस तरह से आना, उसका क्या मकसद है? इसके बारे में तो हम बाद में पता लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अकेला रहना चाहती हूँ। अब आस्था के इस बात पर सबने सहमति जताई। सभी लोगों ने आस्था को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था। अंश को रौनक और आहान ने संभाल लिया था। वैसे भी अरमान की गोद में जाने के बाद अंश गहरी नींद में सो चुका था, तो इसीलिए आहान अंश को लेकर अपने कमरे में चला गया था। वहीं आस्था सीधा अपने कमरे में नहीं, बल्कि अरमान सिंघानिया के कमरे में चली गई थी। वहां पहुंचते ही उसकी आंखें भर आईं, और कमरे का दरवाजा बंद करते ही आस्था फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि अरमान को इस तरह किसी और लड़की के साथ देख पाना उसके लिए बेहद दर्दनाक था। आस्था का दिल बैठने लगा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। संजना की कही हर बात उसे सुई की तरह चुभ रही थी, और गुस्से से उसका चेहरा लाल होता जा रहा था। आस्था के दिल में बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही थीं, खासकर उस लड़की के साथ जो आज तक आस्था के चेहरे की खुशी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। दूसरी ओर अरमान जो संजना को लेकर बाहर आ गया था,
थोड़ी देर बाद वो उससे दूरी बनाकर खड़ा हो गया और उसकी तरफ देखते हुए एकदम से बोला, वेरी गुड, तुमने आज बहुत अच्छी एक्टिंग की। ये बोलकर अरमान ने उसे गहरी नजर से देखा और फिर जल्दी ही ड्राइवर के हाथों से वहां से विदा कर दिया। कहीं ना कहीं अरमान उसके जाने के बाद भी उस रास्ते की ओर देर तक देखता रहा। उसने आह भरते हुए सोचा, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ड्रामे के बाद मेरे घर वाले मुझसे जो भी छुपा रहे हैं वो बहुत जल्द खुद बखुद मेरे सामने आ जाएगा। क्योंकि अरमान को अब इस बात का पूरा एहसास हो चुका था कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है, और इसी रहस्य का पता लगाने के लिए उसने ये अलग तरीका अपनाया था। वो अब किसी से कोई सवाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि पहले ही वो सबसे क्लियरली पूछ चुका था और अब तक जिसने जो जो जवाब दिया उसने वो सब कुछ सुन लिया था। लेकिन वो सारी बातें मानने वाला था या नहीं, ये अब पूरी तरह उसी पर निर्भर था। फिलहाल अरमान ने गहरी सांस ली और सीधा जाकर वसुंधरा के कमरे में बैठ गया। वसुंधरा ने जैसे ही अरमान को अपने सामने देखा तो बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और चंचलता से बोली, बेटा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन तू मुझे जरूर माफ कर देगा, और आज जिस तरह से तूने मुझे सबके सामने मान सम्मान दिया है, सचमुच बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जैसे ही वसुंधरा ने ये बातें कहीं, अरमान खोए हुए लहजे में बोला, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बताइए आप मुझसे क्या चाहती हैं। अब जैसे ही अरमान ने ये पूछा, वसुंधरा के चेहरे पर अचानक एक हल्की सी चमक आ गई। फिर बिना देर किए उसने जल्दी नीले रंग के लिफाफे में लिपटे हुए कुछ कागज अरमान के सामने रख दिए। आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।